और रोग भोगने के समय के बीच में उसमें दुख ही दुख को देखना और दोषों को देखना, दोषों को ये देखना कि एक प्रकार से समझो कि ये संसार के विषय भोग ये शरीर ये सब है, ये नाशवान है, ये एक प्रकार से घृणित है, इस प्रकार से उन्होंने दोष बुद्धि भी करनी और दुख बुद्धि भी करनी। इसका ये अर्थ भी बताया जाता है कि दुख ही प्रधान है, इस वास्ते दुख रूप दोष को विचारना देखना। भाव यह है कि इस प्रकार इनमें दुख बुद्धि होने से स्वाभाविक ही एक प्रकार से वैराग्य की वृद्धि होती है, स्वाभाविक ही संसार से उपरती होती है, जन्म मरण से छूटने के लिए इच्छा होती है, इसके लिए वो उपाय करता है। तो इसलिए ये बात बतलाई गई कि अपने जन्मने में मरने में जरा में व्याधि में दुखों को देखना, जिससे थी अपने जन्म मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करने की विशेष चेष्टा हुए। तो ये तीन बात इसमें बतलाई गई या तीन साधन बतलाए गए, यूं कहिए। आगे के नौ के श्लोक के में भी तीन साधन बतलाए गए हैं।
असक्तिरन भी संग पुत्र दार गृहादिशु, असक्तिरन भी संग पुत्र दार गृहादिशु, नित्यं च समचित तत्व मिष्टानिष्टो पपत्तिषु, नित्यंत समते तत्व मिष्टानिष्टो पपत्तिषु।
पुत्रदार गृहादिषु अशक्ति अनभिसंगो क्या पुनः इष्टानिष्टोपत्तिषु नित्यं समचित्तत्वं। शब्दार्थ बताया जाता है तथा पुत्र स्त्री घर और धनादि में आसक्ति का अभाव तथा ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय प्राप्ति के बीच के मां सदा ही चित्त का सम रहना, ये शब्दार्थ है। इसमें तीन बात बताई गई। एक तो यह कि स्त्री है, पुत्र है और घर है, मकान है, समझो कि रुपये हैं, ऐश्वर्य हैं और भी संसार के जितने जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों के बीच के मां आसक्ति का अभाव। और दूसरी बात यह है कि पदार्थों के बीच के मां जो विशेष एक प्रकार से ममता है कि मानो पुत्र में ऐसी ममता है कि मानो पुत्र मेरा शरीर ही है, मेरा स्वरूप ही है, इसी प्रकार से जिन पदार्थों के बीच के मां समझो कि विशेष एक ममता है, उनका भी अभाव। यदि कहो कि आसक्ति के अभाव की बात तो उसके मां आई गई थी, जो दसवीं बात बतलाई थी यानी दूसरे श्लोक का जो एक प्रकार से पहला जो साधन बतलाया गया था कि इंद्रियार्थेषु वैरागम, इंद्रियों के अर्थों के मां वैराग, तो फिर एक प्रकार से पुत्र दार गृह आदि के बीच के मां आसक्ति का अभाव, इसमें फर्क क्या रहा? इसमें ये फर्क रहा कि वह तो इंद्रियों के अर्थ की बात थी। इंद्रियों के अर्थ जो हैं, समझो कि जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, उनकी प्रधानता थी। तो वे जड़ पदार्थों के बीच के मां भी इंद्रियों के अर्थ एक जैसी बात थी। और ये चीज जो है तो अपने पुत्र है, स्त्री है इत्यादि की जो सजीव जो पदार्थ है, और भी एक प्रकार से तीसरे जो अपने जड़ जो पदार्थ हैं, जैसे रुपया है तो रुपया जो है समझो कि शब्द स्पर्श रूप गंध आदि उन पदार्थों के माँ ये साफ बात नहीं आती है। रुपयों से थी इंद्रियों के भोग मिलते हैं, किंतु रुपया खास जो चीज है वो भी तो एक चीज है। इसी प्रकार से थी जो मकान है उसमें शब्द स्पर्श रूप गंध आदि इंद्रियों के विषयों के बीच के माँ कोई ऐसी साफ बात नहीं आती कि मकान के बीच में। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे जड़ जो पदार्थ हैं, चेतन जो पदार्थ हैं, उनके बीच के माँ भी आसक्ति का अत्यंत अभाव, आसक्ति का जो अत्यंत अभाव है वो एक प्रकार से वैराग है। तो यहाँ कैसा वैराग होना चाहिए कि यहाँ तीव्र वैराग होना चाहिए। जब तीव्र वैराग हो जाता है तो कोई भी संसार के पदार्थ उसको अच्छे नहीं लगते। ये होकर के फिर उसके माँ ममता का अभाव बतलाया कि पदार्थों के बीच के माँ आसक्ति नहीं होकर के उसके माँ फिर ममता रह जाती है। कि ममता एक प्रकार से समझो कि ये आपने मकान मने बनाया था, मकान को मने बनाया था, ये एक प्रकार से मेरा बगीचा है, ये एक प्रकार से ये मेरी स्त्री है, ये मेरे पुत्र हैं। तो उसके माँ जो ममता है, समझो कि विचार के द्वारा पुत्रों में स्त्री में इन सब के बीच के माँ आसक्ति नहीं, तो भी उसके बीच के माँ एक ममता दूसरी चीज है। ये भी बात है कि जहाँ ममता नहीं है उन पदार्थों में भी आसक्ति है। दूसरे के स्त्री में भी आसक्ति होती है, दूसरे के धन में, दूसरे के मकान में भी आसक्ति हो जाती है। तभी तो लोग दूसरे के समझो कि धन को हटते हैं। इस वास्ते ममता का भी अभाव और आसक्ति का भी अभाव। तीसरी बात ये बतवाई, तीसरा साधन कि मन के अनुकूल और प्रतिकूल, इंद्रियों के अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थों के बीच के माँ समान भाव, यानी उनके बीच के माँ समझो कि समता। और वो कैसी समता कि अचल समता, नित्य रहने वाली समता, क्षणिक समता, क्षणिक समता नहीं, उसमें समान भाव। तो ये बात ज्ञान के माँ एकदम प्रधान है। यदि ये बात नहीं है तो उसको ज्ञान ही नहीं है। जैसे समझो कि मट्टी और सोने में समता, सुख दुख में समता, मान अपमान में समता, और कीर्ति और अपकीर्ति के में समता, मित्र और बैरी में समता, इत्यादि सब में जब तक समता नहीं आती है तब तक वो ज्ञानी ज्ञानी नहीं है और भक्त भक्त नहीं है। तो ज्ञान के मार्ग के बीच में तो समता होनी चाहिए। माने सभी एक प्रकार से उच्च कोटि के साधकों के बीच में और महात्माओं के बीच में समता स्वाभाविक ही आ जाती है। इसलिए एक प्रकार से थी ये बात यहाँ बतलाई गई कि समता अवश्य होनी चाहिए। समता इन 20 साधनों के बीच के माँ, ज्ञान के इन 20 साधनों में समता प्रधान साधन है। तो शरीर के अनुकूल प्रतिकूल में, इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल में, मन के अनुकूल प्रतिकूल में, बुद्धि के अनुकूल प्रतिकूल के माँ, सब के बीच के माँ समान भाव होना, सदा सर्वदा समान भाव रहना, ये उच्च कोटि का साधन है। तो प्रथम श्लोक में यानी सातवें श्लोक के बीच के वहां 9 साधन बतलाए, 8वें में 3, 9 और 3 12, और इस 9 में 3, 12 और 3 15, और 10वें के वहां भी 3 साधन बतलाए जाते हैं। मरीचा नन योगे न भगती रविचारिणी,
मरीचारिणी
विविक्त देश सेवित्व मरतीर जन संसदी,
विविक्त देश सेवित्व
मई अनन योगे न अभिचारिणी भक्ति। अपने विवेक देश सेवी तुम जनसंसदी अरती शब्दार्थ बतलाया जाता है वो अर्जुन मुझ परमेश्वर के माँ एक ही भाव से स्थिति रूप ध्यान योग के द्वारा अभिविचार ली भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव तथा विश्वासक्त मनुष्यों के समुदाय के बीच में प्रेम का न होना ये शब्दार्थ है। भाव यह है भगवान का ये कहना है कि मुझ परमात्मा के बीच के माँ अभिविचारिणी भक्ति। तो अभिविचारिणी भक्ति क्या और वो भक्ति अनन्य योग से। तो अनन्य योग का क्या मतलब है और अभिविचारिणी भक्ति का क्या मतलब है कि जैसे कोई पतिव्रता जो स्त्री होती है उसमें व्यभिचार का दोष नहीं घटता, वो अपने पति के माँ ही प्रेम करती है दूसरे पुरुषों में प्रेम नहीं करती। यदि दूसरे पुरुषों के साथ में प्रेम करे या एक प्रकार से उनसे कोई कामना करे तो उसमें व्यभिचार का दोष समझा जाता है। तो इस दोष का उसमें अभाव है। भगवान कहते हैं एक मुझ में उनका प्रेम है, मेरे स्वर किसी के माँ प्रेम नहीं। और अनन्य योग का यह मतलब है निरंतर जो है, भगवान कहते मेरे में जिनका मन है, मेरे में तो जिनकी प्रीति है और मेरे में जिनका मन है, इससे ये भाव लेना चाहिए। एक तो निष्काम भाव लेना चाहिए कि परमात्मा के वहां जो निष्काम प्रेम, परमात्मा के वहां जो प्रेम है सो विशुद्ध प्रेम जिसमें कोई प्रकार का दोष न हुए। और परमात्मा के माँ भक्ति का मतलब है कि एक प्रकार से उत्कोटि का विशुद्ध और अनन्य प्रेम हुए। अनन्य माने परमात्मा को छोड़कर और दूसरे किसी में प्रेम न हुए और वो हुए विशुद्ध। विशुद्ध होने से परमात्मा का जो भक्त है तो परमात्मा के रूप में चित्त की स्थिति भी नित हो, माने परमात्मा का नित निरंतर स्मरण हो और परमात्मा में प्रेम हो। ये स्वाभाविक की बात है कि प्रेम होने से उसका चिंतन स्वाभाविक ही होता है। तो परमात्मा के माँ समझो कि कैसी भक्ति होनी चाहिए कि जैसे पतिव्रता स्त्री की अपने पति में भक्ति होती है ऐसी भक्ति होनी चाहिए। तो एक तो साधन ये है, दूसरा साधन यह है कि एकांत देश का सेवन। कैसा एकांत देश? जैसे पवित्र स्थान हो, एकांत देश हो जहाँ कोई हल्लो गुल्लो न हो, जहाँ कोई प्रकार की समझो कि विघ्न बाधा न आवे, जहाँ कोई विशेष न हवा हो, न कोई शीत हो, न गर्मी हो, न कोई एक प्रकार से समझो कि जल वर्षा हो, न कोई खुड़का होता हो, इस प्रकार के दोषों से जो रहित हो, ऐसा जो देश है जन समूह से रहित है, ऐसा देश और पवित्र देश जैसे कोई पहाड़ की गुफा हो, कोई वन हो, या कोई गंगा के किनारा हो, या कोई देवस्थान हो, या कोई तुलसी का वन हो, इस प्रकार से पवित्र स्थान हो, एकांत देश हो है, तो ये इस श्लोक में दूसरी बात है यानी दूसरा साधन है। और जनों के समूह के बीच के माँ अरती ये तीसरी बात है। मनुष्यों के संघ के बीच के माँ अरती माने संसारिक जो आदमी है या जो प्रमादी जो हैं, तामसी आदमी जो हैं, संसारी माने जो भोग विलास के भोगने वाले ऐसे राशि जो पुरुष हैं, राशि पुरुषों के बीच के माँ और तामसी पुरुषों के माँ प्रीति न हो। प्रीति तो किसी में भी नहीं होनी चाहिए, किंतु यहाँ प्रकरण है संघ के बीच के माँ कि एक मनुष्यों का जो झुंड है मनुष्यों के झुंड के बीच के माँ, मनुष्यों के झुंड के बीच के माँ प्रीति का नहीं होना। सात्विक जो मनुष्य सत्संग के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे मनुष्यों के बीच के माँ व्यक्तिगत प्रीति की तो आवश्यकता नहीं, किंतु एक प्रकार से थी उस सत्संग के माँ प्रीति न हो यह मतलब नहीं है। इसलिए ये बात बतलाई जाती है कि राजसी पुरुषों के झुंड में और तामसी पुरुषों के झुंड में प्रीति न हो, किंतु सत्संग के लिए इकट्ठे हुए मनुष्यों के बीच के माँ उन झुंड के माँ प्रीति न हो, ये बात नहीं। इस वास्ते जन समूह, उसी को जन समूह कहा जाता है कि संसारिक मनुष्यों का जो संघ है और अध्यात्म विषय के जो इकट्ठे हुए लोग हैं तो ये वास्तव में संसारी नहीं है। इसलिए उसके माँ संघ के बीच के माँ प्रीति के लिए निषेध नहीं किया जाता है। तो इसके माँ ये तीन बात बतलाई गई। 15 साधन तो पहला बतला दिए गए थे, 3 इसमें बतला करके सब मिलकर के 18 हो गई और सब 20 साधन हैं। आगे के 11 के श्लोक के माँ पूर्वार्ध के माँ समझो कि 2 साधन बतलाए जाते हैं और उत्तरार्ध के बीच के माँ इससे जो विपरीत है उसको अज्ञान बतलाया गया है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानात् दर्शनम्।
अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानात् दर्शनम्।
एतद् ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं यदतोऽन्यथा।
एतद् ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं यदतोऽन्यथा।
अध्यात्म ज्ञान नित्य तत्त्वम् तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानम् यत अतः अन्यथा तत् अज्ञानम् इति प्रोक्तम्। ये संस्कृत के में बतलाए गए, अब भाषार्थ बतलाया जाता है। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वतर देखना, ये सब तो ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसे कहा है। ये शब्दार्थ कहा गया, इसका भाव बतलाया जाता है। 18 साधन तो पूर्व में बतला दिए और 2 इसके बीच के माँ बतलाए गए, सब मिलकर के 20 होते हैं। तो अध्यात्म ज्ञान उसका नाम है कि आत्मा के विषय का ज्ञान, यानी परमात्मा के विषय का जो यथार्थ जो ज्ञान है और उस परमात्मा के विषय के ज्ञान के मां नित्य जो स्थिति है। माने समझो कि हर वक्त जो है, हर समय के बीच के मां अध्यात्म विषय का जो ज्ञान है, परमात्मा के विषय का जो ज्ञान है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, ऐसे ज्ञान के बीच के माँ ही नित्य स्थिति, उसी के माँ एक नित्य स्थिति। हर वक्त समझो कि परमात्मा के ध्यान के माँ नित्य स्थिति, मान उसका ज्ञान के माँ स्थिति है, वो ध्यान के माँ स्थिति है। तत्व ज्ञान जो है माने परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और उसका जो अर्थ है वो है परमात्मा का स्वरूप, उस परमात्मा के स्वरूप का निरंतर अवलोकन करना, यानी उस परमात्मा के स्वरूप का हर समय के बीच के माँ मनन करना, उस परमात्मा के स्वरूप का स्मरण रखना, ये एक प्रकार का उच्च कोटि का साधन है। हर वक्त परमात्मा को याद रखने का जो साधन है बहुत उच्च कोटि का साधन है। हर वक्त याद रखते रखते उसका आगे जाकर के समझो चिंतन होने लगता है हर वक्त, और परमात्मा के स्वरूप का हर वक्त चिंतन होने के आगे जाकर के ध्यान लग जाता है और ध्यान से फिर परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए
अध्यात्म विषय के मानित स्थिति और परमात्मा के स्वरूप का निरंतर ध्यान, ये दोनों साधन बड़े उच्च कोटि के हैं। परमात्मा की प्राप्ति के मां बहुत समझो कि उच्च कोटि के साधन माने गए हैं, और ज्ञान का जो साधन है एक प्रकार से उन साधनों के मां भी ये उत्तम साधन माने गए हैं। तो ये 20 जो है सो ज्ञान के साधन बतलाए, और इससे जो विपरीत है जो उल्टे हैं उन सब का नाम अज्ञान है, क्योंकि अज्ञान की वृद्धि में हेतु होने के कारण से उन सब को अज्ञान के नाम से कहा गया। उदाहरण के लिए बतलाया जाता है कि जैसे 7वें श्लोक में बतलाया गया कि अमानी तुम माने मान को न चाहना, तो मान को जो न चाहना का जो भाव है ये ज्ञान है, ज्ञान की प्राप्ति में हेतु होने के कारण से। दूसरा बतलाया गया कि अदम्भी तुम मन दम का न करना, तो दम का न करना जो है वो ज्ञान में सहायक है, और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का चाहना जो है उससे ज्ञान की वृद्धि होती है, वो अज्ञान का हेतु है, इस वास्ते उसका नाम अज्ञान बतलाया। इसी प्रकार से थी जो पाखंड है दम्भ है वो अज्ञान बढ़ाने वाला है, इस वास्ते उसका नाम समझो कि अज्ञान कहा। अमानी तुम अदम्भी तुम, तो आपने समझो कि ज्ञान है और मान बढ़ाई की जो इच्छा है और दम का करना है ये सो अज्ञान है। और इसी प्रकार से थी हिंसा जो है जीवों की जो हिंसा करना ये भी एक प्रकार से अज्ञान में ही सहायक है, अज्ञान को बढ़ाने वाला है, इसलिए उसको अज्ञान कहा। इसी प्रकार से थी और जितने जो साधन ज्ञान के साधन बतलाए गए हैं और उससे जो विपरीत है वो अज्ञान की वृद्धि में हेतु होने के कारण से उन सबको अज्ञान कहा गया है। क्षांति, क्षांति का मतलब है क्षमा, तो क्षमा ज्ञान है और क्षमा का न करना जो है बदला चाहना जो है वो अज्ञान है, बेसमझी है, मूर्खता है, वो अज्ञान को बढ़ाने वाला है, इस वास्ते उसका नाम अज्ञान है। आर्जु जो है वो ज्ञान है, और जो वक्रता जो है ईर्ष जो है टेढ़ापन जो है ये अज्ञान को बढ़ाने वाला है, इस वास्ते इसका नाम अज्ञान है। मन वाणी शरीर से गुरु की उपासना करना सेवा करना ये ज्ञान है, और इसके विपरीत गुरु का तिरस्कार करना अपमान करना सेवा न करना ये सब अज्ञान के हेतु है, कि मूर्ख जो होते हैं वे इस प्रकार से कर सकते हैं, इसलिए उसका नाम अज्ञान है। बाहर और भीतर की पवित्रता ज्ञान में हेतु है, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि होने से थी परमात्मा के स्वरूप में दृढ़ समृद्धि होती है, इसलिए ज्ञान में सहायक है, और इसके विपरीत जो है अपवित्रता जो है बाहर भीतर की जो अपवित्रता जो है शोचाचार और सदाचार के विरुद्ध जो अपवित्रता जो है वो अज्ञान बढ़ाने वाले हैं, इसलिए उसका नाम अज्ञान रखा। ऐसे अंतःकरण की जो अपवित्रता है वो एक प्रकार से साक्षात अज्ञान बढ़ाने वाली चीज है ही, इसलिए बाहर और भीतर की जो अपवित्रता है उसका नाम अज्ञान है। और बुद्धि की और मन की जो स्थिरता है एकाग्रता है ये ज्ञान में सहायक है, और जो चंचलता है वो अज्ञान को बढ़ाने वाली, इस वास्ते इस चंचलता का नाम अज्ञान है। मन का जो अच्छी प्रकार से जो निग्रह है परमात्मा की प्राप्ति में ज्ञान में सहायक है, इस वास्ते इसका नाम ज्ञान है। और मन का जो वश में न होना है तो वो अज्ञान में हेतु है, इस वास्ते उसका नाम अज्ञान है। इंद्रियां के जो भोग हैं और उनमें जो वैराग है ये तो एक प्रकार से ज्ञान का साधन है, और इनके वहां जो इंद्रिय के विषयों में जो आसक्ति है, राग है, ये पतन का हेतु है, अज्ञान को बढ़ाने वाला है, इस वास्ते इसका नाम अज्ञान है। देह के बीच के वहां जो अहंकार है वो तो प्रत्यक्ष के बीच के वहां अज्ञान का स्वरूप ही है, और अहंकार का जो अभाव है वो ज्ञान है। माने एक प्रकार से कि देह के बीच के मां जो देहाभिमान है, अनात्म पदार्थ में जो आत्माभिमान है उसी का नाम अविद्या है, उसी का नाम ज्ञान है। इस वास्ते यहाँ अहंकार जो है अज्ञान में हेतु होने से इसको अज्ञान कहा। जन्मने में, मरने में, जरा में, व्याधि में दुख रूप दोष का देखना ज्ञान है। इससे वैराग उत्पन्न होकर करके ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और जन्मने में, मरने में, जरा व्याधि में दुखों का देखना, दुख रूप दोष का जो देखना है वो ज्ञान है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के मां दुख रूप दोष का नहीं देखना ये अज्ञान है। पुत्र और स्त्री और घर आदि के बीच के मां प्रेम करना जो है ये अज्ञान है। क्यों? पुत्र घर और गृह आदि के बीच के मां आशक न होना तो ज्ञान है, और इसके मां आशक होना तो अज्ञान है। अज्ञान में हेतु होने से इसका नाम अज्ञान है। और इसी प्रकार से उसके बीच के मां ममता का न होना तो ज्ञान है, और उस पदार्थों के मां ममता होना है ये अज्ञान है। अज्ञान में हेतु होने से इसको अज्ञान है तो कहा है। और इष्ट और अनिष्ट पदार्थों के बीच के मां जो नित्य समभाव रहना है, समता है, ये ज्ञान है। और इष्ट के बीच के मां राग होना और अनिष्ट के मां द्वेष बुद्धि होना, ये राग द्वेष का जो होना है ये ज्ञान का हेतु है। इस वास्ते इसका नाम ज्ञान है। लोगों को इन सब बातों को सोच कर करके इसके विपरीत का तो त्याग करना चाहिए, और ज्ञान के जो भी साधन बतलाए हैं उनका ऐसा सेवन करना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण यण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद पारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदियानंद आनंदियानंद शांति शांति शांति।
गीता अध्याय 13 श्लोक 7 से 11 तक में कथित ज्ञान के 20 साधनों का वर्णन। आज मिति माघ कृष्णा तृतीया मंगलवार संवत 2011 को रात्रि में 10 बजे श्री राम रिकदास जी परसरामपुरिया की कोठी रमन रेती वृंदावन में श्री जयदयाल जी गोविंद का द्वारा किया गया।